आ रही, उसको बुखार चढ़ रहा, इनकी कथा सुनूं कि तेरी कथा सुनूं, मर बैठ अपनी कथा को करता रहे। अब वो रोटी पकाने के लिए बैठ गई, भी चलो साधु महात्मा है उधर, उसकी भी रोटी धोबी के ले जानी हो। गुस्सा जो था ना, चंडाल होता है, एक मिनट में था उतर गया कि आज फांसी लेके मरना, रोटी पकाने बैठ गई। अब जब लगी रोटी पकाने बैठने, अब उन्होंने वो जो साधु नारायण जी थे, वो कथा कहाँ से शुरू करी कि एक समय मार्कंड ऋषि था, उसने शिष्य से तपस्या करनी शुरू की, बीच में आकर के आदि नारायण ने उसको समझा दिया कि तुम भगवान आएंगे तुमसे ये कहना के प्रभु चरणों से दूर ना करो, मुझे माया भी दिखाओ। फिर वो तपस्या करने लगा, जब उसकी तपस्या पूरी हो गई तो ये कथा नहीं सुनी उसने, उसको कुछ पता ही नहीं था, याद ही नहीं था कि मैं मार्कंड हूँ। जैसे आज हम लोगों को बार बार चर्चा सुनाई जाती है कि सुंदर साथ जी बादल बरसा रू अल्लाह, बादल बरसा रू अल्लाह, बूंदे लई तिन और कोई ना ले सके बिना अर्श के, परम धाम की आत्माओं के बिना ये वाणी किसी को नसीब नहीं होनी। लाख चर्चा हम सुनेंगे पर हमको कभी भी ये यकीन नहीं आ सकता, आता ही नहीं है, तभी ईमान गिर जाता है कि ले साढ़े कर्म की है, ऐसी परम धाम की आत्मा हो सकने, और ऊपर से कहने वाले क्या कह देते हैं, इनकी शक्ल वेख शक्ल है, कितनी बेईमानी करता है, कितने झूठ बोलता है, ऐसे बुरे कर्म करता है, और अपने आप को कहता है कि मैं परम धाम की आत्मा बना फिरता हूँ, ये है परम धाम की आत्मा। अब ऐसी बातें सुन के हम लोग जाते हैं डर कि ना भाई ना, परम धाम की आत्मा कहना या बनना है तो बड़ा पाप है, क्योंकि हम लोगों के कर्म ऐसे हैं। सुंदर साथ जी जागी, कर्मों से ना कोई आत्मा बनती है और ना ही आत्मा कोई गिरती है, कर्म शरीर से होते हैं। अगर ये शरीर का जीव ऐसे कर्म करेगा नहीं तो आत्मा देखेगी क्या? सोचो, हमारी आत्मा परम धाम की है, हमारी आत्मा ब्रह्म सृष्टि है, शरीर ब्रह्म सृष्टि नहीं, ये तो धारण करवाया है खेल देखने के लिए। अब जिस जिसकी जैसी चाहना है, जब तक वो शरीर में बैठ करके देखेगी नहीं। अब 400 साल हो गए, हम जितने भी सुंदर साथ यहाँ बैठे मंदिर में, इसी जन्म में तो तात्म मिला, इससे पहले भी तो 400 साल तक हमारी आत्मा किसी शरीरों पर बैठी होगी, क्या क्या किए होंगे, शराबें पी होंगी कि जुए खेले होंगे कि व्यभिचार किए होंगे कि ना जाने क्या क्या जन्मों में क्या क्या कुकर्म हम लोगों ने किए होंगे, ये हमें तो पता नहीं। तो अब ये जो कुछ सुनने को मिल रहा है, ये कोई मत सोच लेना कि साढ़े पिछले जन्मों के कर्म से, अगर ये कर्मों से चीज मिलनी होती तो सबसे पहले देवी देवतों ब्रह्मा विष्णु महेश को मिलते। ये किस लिए हमको मिल रही है कि हमारे अंदर परम धाम की आत्म अंकुर, अगर परम धाम का संबंध ना होता तो कभी भी ये चार शब्द सुनने को हमें मिलते नहीं। अब वो बैठे साधु जी महाराज कथा सुना रहे, तो ये कथा उनको याद ही नहीं, जैसे हम लोगों को याद ही नहीं आती। अरे भाई ठीक है, चर्चा तो ठीक है, पर जेड़ा परम धाम दा होसी होसी असी थोड़ा मूल मिला के बैठे हैं, हमें विश्वास ही नहीं आता। इसी तरह से वो धोबन अपनी रोटी पका रही है और वो कह रहे हैं कि मार्कंड ऋषि ने बैठ करके तपस्या की, स्वामी नारायण उनके सामने भगवान नारायण आए, आकर के पूछा मार्कंड महाराज क्या चाहते हो, उसने मांगा कि प्रभु माया भी देखनी है, चरणों से जुदा ना करना, इतनी चीज उसको कोई याद ही नहीं। अब भगवान ने इच्छा पूरी करनी थी इसलिए कहा अच्छा तू जितने देर में चंदन रगड़ेगा रगड़, तू चंदन पूजन कर ले, मैं इतनी देर में तुझे माया दिखाता हूँ। अब वो लगा चंदन रगड़ने, भगवान ने माया का पर्दा डाल करके गहरे समुन्द्र में उसकी सुप्ता को डाल दिया, और वहां जाकर के वो गहरे समुन्द्र में गोते खाता खाता एक नग्न औरत के रूप में आ गया। अब जब नग्न औरत के रूप में आ गया तब एकदम कहे मेरी सारी बात सुनाई जा रही है, क्योंकि पहली वाली जितनी बात थी वो बेहोशी गहरी नींद के अंदर थी इसलिए उसको याद नहीं आई। फिर वो सारा प्रसंग उसको याद सुनाया, केसरा धोबी ने उसको कपड़े दिए, फिर उसे धोबी से पूछा और धोबी के साथ फिर उसकी शादी हो गई, और एक एक बात। अब भगवान नारायण ही तो अपने हुक्म से उसको रोज मार परवा रहे थे, सब बिता रहे थे, पांचों सालों का सारा जिक्र जब सुनाया तो अंत में आकर के कहा कि फांसी जब वो लेने लगी तो स्वयं भगवान दरवाजे पे आ गए, आकर के सारी कुंडी खटखटाई, अब उसने को दरवाजा खोल दिया। भगवान कहते हैं मार्कंड की कथा सुनाते हैं और वो खड़ी जो है भगवान को गालियां निकाल रही है। भगवान तो भक्तों पर दयालु दया करने वाले होते हैं, वो दया करके अंदर चले आ गए, आ करके बैठे। भगवान नारायण जो है मार्कंड की कथा सुना रहे हैं और मार्कंड धोबन के रूप में बैठी जो है रोटी बना रही है। बाजा भी इतनी बात सुनी, अब सच बात याद आ गई। अब जाकर के जब बात याद आ गई तो रोटी रोटी तवा तुआ तो वही रह गया। उठी और उठ करके भगवान के चरणों पे गिर पे वो साधु महात्मा के, पता चल गया कि ये साधु नहीं, ये तो आदि नारायण मुझे माया से निकालने के लिए आए हैं। बस एकदम चरणों पे धड़ गिरी और क्या कहा, भगवान। बस जो ही भगवान किया, उन्होंने ऊपर से माया का पर्दा जो कर रखा था खींच लिया। अब हाथ वो मारकंड की तरफ, फिर वहां असल मारकंड हो गया ना, माया हट गई सामने से। हाथ में वो चंदन की लकड़ी और ज्यों का त्यों चंदन भी घिसा नहीं। वो हैरान हो गया कि मैं चंदन भी नहीं घिस पाया और इतने पांच जन्म भी दे पाया मैं, पांच बच्चे भी पैदा कर लिए। ऊपर जो नजर उठा के देखी तो भगवान हंसते हंसते कहते हैं मारकंड माया, अरे भगवान इसका नाम ना लेगा, बड़ी दर्द हुई, दो महीने बड़ा मारा था भगवान। वो अब जो वाणी यहाँ संस्वरूप साहब में आती है, ए दुख तुमको घर में जाके सुख देसी, कि यहाँ जो हमें दुख हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, दुखों को देख के चिल्ला रहे हैं, चाहे मैं हूं कोई भी हूं, किसी प्रकार का संकट दुख हमारे ऊपर आता है हम चिल्लाते हैं। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साजी, इसलिए ये दुख तुमको दुख लग रहे हैं क्योंकि तुम शरीर से माया देख रहे हैं। अगर तुम उस दृष्टि से जो परम धाम वाली नजर है उससे देखो कि हमको ये तन जो दिया है ये देखने के लिए दिया है, तो ये माया इतनी तुम्हें सुखी लगे कि परम धाम से भी ज्यादा कीमती ये माया है, क्योंकि ये तो क्षण में घर है और परम धाम सदा अनादि है, वो कभी भी जो है जाने वाला नहीं, और ये हमारे देखते देखते हम लोग देख करके परम धाम जाएंगे कि कैसे हजार का मेला होता है और आठ विष्टें कैसे होती हैं। बस ये बात जिंदा दास जी ने सुनाई कि महाराज ए सेठ जी, जिस तरह से आदि नारायण ने चरणों में बिठाकर मारकंड ऋषि को माया भी दिखाई और वैकुंठ भी लेकर के गए, इसी तरह से परम धाम मूल मिलावे के अंदर हमने श्री राज्य महाराज से जिद करके ये खेल मांगी थी कि धनी सौ बेर हमें आजमा करके देख लो, माया में जरूर भेजो, हम माया में जा करके भूलेंगे नहीं। और धनी ने कहा था तुम भूल जाओगे, मैं तुम पर रसूल भेजूंगा, रसूल किताबें लाएगा, तुम उनकी वाणी पर मानोगे नहीं। आखिर में हादी श्यामा जी को मैं तुम्हारे जैसा तन दे करके भेजूंगा और उनके अंदर बैठ करके परम धाम की वाणी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हादी मीठे वचन हक के कैसे रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। आखिर में फिर मैं क्या करूंगा, मैं भेजूंगा अपनी रूह को, मैं खुद आऊंगा। जो देर धरसी तुम माफक, देसी बिद बिद की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे हाथ, मैं भी तुम्हारी तरह से तन धारण करके आऊंगा। परम धाम की सारी वाणियां संसार के ग्रंथों के प्रमाणों से हिसाब से दे दे के तुम्हें समझाऊंगा, पर फिर भी तुम ना पहचान पाओगे कि ये जगाने वाला परम धाम में बैठा हमें आवाजें लगा लगा के पुकार पुकार के वाणी के द्वारा हमें बुला रहा है, लेकिन हमारे पास सुनने की फुर्सत नहीं है। ऐसी बात सुन करके सेठ लक्ष्मण दास जी के दिल पर इतनी चोट लगी कि धिक्कार है मेरे जीवन पर और ऐसे पैसे पर, जिसने मुझे नरकों में डाल रखा है, मेरे से तो ये गरीब माली और मेरी दुकान का नौकर अच्छा है, जो राज्य के चरणों के इतने प्यारे बने हुए हैं और जिन्होंने पहचान तो रखा है। बस फिर आया और चर्चा जो सुनी, दो तीन दिन चर्चा सुन के रोना, अब जब चर्चा सुनता रोता है क्योंकि चोट लगती है। जैसे जैसे आत्म की मैल निर्मल होती है, कलेजे पर चोट लगती है, दिल पर असर होता है कि हमसे कितने पाप हो रहे हैं, हमने क्या राज्य से वादा किया था, आखिर मरना है, अखंड शरीर तो कोई है नहीं। बस फिर जा करके स्वामी जी ने उसको तारतम दिया। अब जिस वक्त सेठ लक्ष्मण दास जी को तारतम, उधर चिंतामणि जी को तारतम, हजारों करता आत्म देती है, सैकड़ों की आत्म जागृत हो गई। अब स्वामी जी उनको कहते हैं कि भाई अब हम मस्कत बंदर जाएंगे, असल काम हमारा वहां जाने का था। बायजुराज बंध में आ गए हैं और सुंदर शास्त्री अपने बंध में है, दो तीन साल बीत चुके हैं, कैसे काम चलेगा, वो तो बंध में बैठे बेचारे हमारी इंतजार करते होंगे। तो सेठ लक्ष्मण दास जी ने तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए कि स्वामी जी जितना पैसा आप कहो, लाखों कहो, 2 लाख कहो, 10 लाख कहो, मैं लेके जाता हूँ, आप हुक्म कीजिए, मैं उन सब सुंदर साहब को छुड़ा के ले आता हूँ, आप छोड़ करके हमें जाइए नहीं। स्वामी जी कहते हैं ये बात तेरी ठीक है कि उनको तो तुम पैसे से छुड़ा के ले आओगे, लेकिन जिन आत्माओं के कारण से छापा पड़ा और उनका वहां जाना हुआ, जो अरब के अंदर हमारी आत्माएं माया के अंदर फंसी हुई है, जिनकी वजह से ये छापे का कारण पड़ा है, उन आत्माओं को तो पैसा खर्च करने से नहीं तू जगा सकेगा, इसलिए वहां जाना काम हमारा है। हम वहां जाएंगे, जा करके चर्चा सुनाएंगे, और सोई हुई आत्म जो अरब के अंदर उतरी है, क्योंकि श्री राजी महाराज ने कहा था कि अब जुदा जुदा देश, जुदा जुदा प्रांत, जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा नगर, जुदा जुदा जाति, जुदा जुदा भेष, जुदा जुदा देवी देवता, आग पानी पत्थर को पूजोगे, अब ब्रिज और गोकुल की तरह से इकट्ठे न रहोगे, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। और तुमने सबने कहा कि धनी शोभे रजमा लेना, हमने माया को अब एक बार कर देख लिया है, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए जो आत्माएं अरब के अंदर है उनको कौन जगाएगा। इस बात का जवाब अब छठे नगर का सुंदर साहब क्या जवाब दे कि भाई पैसे से तो आत्मा थोड़ी जागृत होनी है, आत्मा तो जागृत श्री जी की वाणी से होनी है। तब सब सुंदर साहब ने हुक्म दिया कि अच्छा धनी, वो काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जाओ, वापसी तो फिर यही रास्ता है, यहीं से ही आओगे। अब सुंदर साहब की आज्ञा लेकर स्वामी जी लाठी बंदरगाह आए, अब यहाँ से नाव में सवार होकर अब यहाँ से चले, तो 40 दिन के अंदर जो है नाव जा करके लाठी बंदर, जिसको आज कराची बंदर का कहते हो, यहाँ से चल के मस्कत बंदर में पहुंचती है, नाव से उतर करके किनारे के ऊपर ही, जैसे बस स्टैंडों पर दुकानें होती हैं, स्टेशनों पर दुकानें होती हैं, तो समुद्र के किनारे पर एक दुकान थी, उस दुकानदार का नाम महावजी भाई था, और वो भी लोहानिया जाति का खत्री था। स्वामी जी का उसके साथ कोई शरीरक संबंध, दूर का रिश्ता, कोई बिरादरी खानदान का समझ लो, या जात का कोई आपस में था, ऐसा कुछ थोड़ा संबंध थे, थोड़ी सी देख करके पहचान हो गई कि भाई ये वो व्यक्ति है। महावजी भाई आगे भागे और भाग करके गले लगाया, एक दूसरे को मिले और आकर के किनारे पर ही जो दुकान थी, स्वामी जी वहां विराजमान हुए। तब स्वामी जी ने जब पता चल गया भाई थोड़ी नाता है, तो पूछा कि भाई 4 सालों से जो 2 साल हो गए हैं लोहाना जाति के लोग यहाँ बंद में थे, कहने लगे जी हाँ बिल्कुल है, उन पर कोई कष्ट संकट तो नहीं है, कहने लगे कि कष्ट संकट तो नहीं है, बाकी जातियों वाले अपना अपना पैसा दे करके छुड़ा के ले गए हैं, एक लोहाना जाति के लोग जो है सूर्यवंशी है, स्वामी जी जिस स्थान में जन्म लिया, ये लोहाना लव और कुश थे ना, लव वंश से जो है ये स्वामी जी का वंश आया है, केशव ठाकुर जी का, ये खत्री वंश राम भगवान के सूर्यवंशी वंश में से, मतलब शरीर संबंध बता रहे हैं, जो देवाती और संतनु ये 2 भाई थे, ये लोहाना जाति के थे, और उसमें से जो है ये महावजी भाई भी थे, तो उस जाति के नाते से ही पहचान करके खूब स्वागत किया। अब विश्वनाथ भी साथ थे, अब विश्वनाथ को पता चल गया, उसने जा करके बायजुराज को और सुंदर साथ को सबको सूचना दे दी, जो नजर बंद किए हुए कि भाई घबराओ नहीं, स्वामी जी आ चुके हैं। रूपा राजा भी जो है वो हर समय बायजुराज जी के साथ रहती थी, वो भी अब आ गए। नजर बंद जो लोग होते हैं ना वो जा सकते हैं, वो कैदियों की तरह कैद नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। अब उन्होंने आकर के दर्शन किए, सब आके मुलाकात की, अब महावजी भाई भी अपने घर ले गया, खूब आदर सत्कार करके अपने घर में कमरा ठहराने को लिए दे दिया, खूब सुंदर रसोई बनवा करके बिठाया, कोई भोग तो नहीं रखना भाई रखते सर, तब रसोई बिठा करके खूब प्रेम के साथ जो है महावजी भाई ने रसोई अरवाई। अब स्वामी जी आरोप करके फिर चर्चा शुरू करनी शुरू कर दी, काम ही एक चर्चा का था और तो कोई काम ही नहीं था। अब वहां जब बैठ के चर्चा सुनाई, तो पहले अपनी जीवनी के किस किस तरह से संकट सह करके घर ग्रस्त को छोड़ करके हम दी बंदर में आए, दी बंदर से कैसे ठट्ठे नगर में आए, ठट्ठे नगर में किस तरह से चिंतामन भट्ट और जो है लालदास जी की जागनी हुई, कैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कारण हमारा आने का है। अब यहाँ ब्रिज राज की, अखंड की, मानव तन की, 84 लाख योनियों की कथा सुना 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 करके वाणी, पहले एकदम ही परम धाम की वाणी तो किसी को सुना तो कौन समझ सकता है, कोई मानेगा ही नहीं कि कोई परम धाम है। तो पहले ये स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, कर्मकांड 84 लाख योनि क्या होती है, स्वर्ग से आगे वैकुंठ कैसे होता है, वैकुंठ से आगे आदि नारायण साथ शून्य मंडल कैसे है, उसके आगे फिर योग माया कैसी है, और जिस योग माया में चार स्वरूप अव्याकृत सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म सत्य स्वरूप, और फिर अखंड ब्रिज और अखंड रास का रूप कैसे है, उसके आगे 25 पक्ष परम धाम के अक्षर ब्रह्म और अक्षातीत कैसे है। ऐसी जब बैठ करके अलौकिक ज्ञान और ग्रंथों के प्रमाण गीता भागवत से देते हैं तो लोग भागे चले आते हैं, आ आ करके जो है चर्चा सुनते हैं। एक दिन अब लोग वहां के भी भाई कष्ट तो होगा उनको, क्योंकि जिन लोगों के मंदिरों की आमदन ही वो लोग रोज, अब भी आप देखते हैं माताएं हो भाई हो मंदिरों में जाते हैं, जिस भी मंदिर में कोई जाता है और कोई आटा ले जाता था, कोई जाके पैसा रखता था, इससे उनके रोजगार चलते थे। अब वो लोगों को आमदन होती नहीं तो वो तो दुश्मनी स्वामी जी से करेंगे कि नहीं करेंगे। उन लोगों ने सोचा, मिल करके राय की कि चलो भाई आज चलते हैं जाके महावीर भाई से घर स्वामी जी से लड़ेंगे, प्रश्न करेंगे को हम इतने मरे मुर्दे छोड़े हैं। अब आए तो वो लड़ने के लिए, लेकिन स्वामी जी किसी की निंदा तो करते नहीं, समझाते जरूर है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जो वेदों में लिखा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो भाई मिथ्या को परमात्मा मान करके बैठ जाओगे तो जो मिथ्या स्वयं मिथ्या है वो हमें कैसे भवसागर से पार करेगा। जब अखंड अलौकिक ज्ञान और श्रीमद् भागवत गीता पुराणों के प्रमाण देकर के समझाए, सब ने लाखों शुक्र मनाया और बजाय लड़ने के आकर के जो है तात्म लिया। अब माया ने सोचा भाई ये काम भी मेरा चलाया जो था फेल हो गया। फिर एक दिन महावजी भाई के दिल में कुछ गुमान सा आ गया, क्योंकि अक्सर होता है माया है, ये शरीर माया का है, बुद्धि माया की है, किसी को कह बैठा अरे ठीक है स्वामी श्री प्रेमनाथ जी महाराज आए थे, आए तो हमारे घर ने सेवा तो हम करते हैं, रोज बढ़िया बढ़िया खाना हम खिलाते हैं, कपड़े हम नई से नई चद्दर बिछाते हैं, हम सेवा करते हैं, अभिमान आ गया। स्वामी जी के कान तक बात चली गई, बस चर्चा में खूब खंडनी कर दी, खंडनी कर दी महावीर भाई की, अर्थ कच्चा था, ईमान का पक्का नहीं था, बस अब बेइज्जती समझ ली, वाह भाई हमारे तो एक हम घर रखे बढ़िया से बढ़िया इनके खाने खिलाए, काम काज छोड़ करके दुकान का सत्यानाश हमने कर रखा है, नई नई चदरें रोज बिछा के देते, कोई बात थी कमी थी मुझे एकांत में समझा लेते, भरी सभा में बेइज्जती कर दी, दुकान पे चला गया रूठ करके। और वहां जाके अपना लड़का जो महावजी भाई था, उनके लड़के का नाम महावजी था, उसको कह दिया बेटा तू आज घर चले जाना, और कांजी महावजी कांजी अच्छा कांजी था गलत बोला गया क्षमा कीजिएगा, हाँ तो कांजी लड़का जो था उसको भेज दिया, महावजी के लड़के का नाम कांजी था, कांजी को भेज दिया। महावजी रूठ के दुकान पे बैठ गया, कह दिया माता जी से पूछ लेना जो वो सब्जी सुब्जी कहेंगे लाके दे देना, मैं आज चर्चा सुनने नहीं आऊंगा। ठीक, और स्वामी जी ने सवेरे देखा भाई चर्चा में आए नहीं, आज महावजी नहीं आए, बात क्या है। कांजी आया, उनसे पूछा कि बेटा के पिताजी तुम्हारे कहाँ, कहने जी कहीं नहीं बाहर नहीं गए यहीं पर है दुकान पर बैठे। अच्छा ठीक, अब फौरन समझ गए कि सवेरे उसको समझाने के लिए उनकी आत्मा को निर्मल करने के लिए खंडनी की थी, उसी से उसने बेइज्जती समझ ली है, दुकान पर बैठ गया। रात को सोने चर्चा के बाद देखा तो फिर भी नहीं आया, भेजा जबराइल को, जबराइल जरा इसको सीधा करके ला, वैसे आराम से नहीं आएगा। ऐसी ऐसी मेहर, ऐसी ऐसी कृपा करके किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह सोया हुआ दुकान बंद करके महावीर भाई का धार आके, सपने में नहीं ठीक प्रैक्टिकली सोते हुए आकर के धार मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ा, हकीकत में थप्पड़, सपने में नहीं हकीकत में थप्पड़ पड़ा, जैसे एकदम डर के उठ गया। उन्हें समझा कि शायद को भूत प्रेत है, फटाक से अपनी माथे से लाके दिया बत्ती की तो भूत प्रेत थोड़ा था, ताला अंदर से बंद करके सोया था, भूत कहां से घुसा उसके अंदर। जब माचा जलाई, बत्ती बत्ती लाइट जलाई, अब बैठ के पछताने लगा कि ओहो भूत प्रेत कौन आना है, ये उंगलियां किसकी लगी हैं, भूत की थोड़ी, ये स्वामी जी हैं जो मार मार के जगाते हैं। मैंने मेरी आत्मा के जगाने के लिए उन्होंने सहरे मेरे लिए कुछ खंडनी कर दी थी, वो बातें जो है मेरे से सहन हुई नहीं, और मैं जो उनके रूठ के यहाँ आ गया था तो वो मुझे छोड़ेंगे थोड़ा। उसी वक्त उठा, दरवाजा अंदर से खोला, ताला बाहर करके बंद, चला गया घर। 3 बजे थे, जिस कमरे में स्वामी जी सो रहे थे, कि स्वामी जी ताला बंद करके थोड़ा ही सोते थे, दरवाजा खोला, चरण पकड़ के लगा सिसकियां भर के रोने। स्वामी जी की जाग खुल गई, पूछा भाई कौन है, कौन हो, अंधेरा तो उठाई, दिया बंद था, सो रहे थे स्वामी जी भी। महाव जी भाई आगे से जो है जवाब कह देता है, स्वामी जी एक तो थप्पड़ मार मार के जगाते हो, फिर ऊपर से पूछते हो कौन है। मैं ही महाव जी आया, मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने आपकी पहचान नहीं की थी, आपने जो शब्द कहे थे वो मेरे फायदे के लिए, मेरी आत्म को धोने के लिए किए थे, पर मैंने उसको अपमान समझ करके रूठ गया था, कृपा करके क्षमा कर दी। बस अब ईमान पक्का होने लगा, क्योंकि जब तक ईमान कब आता है, जब स्वरूप की पहचान होती है, जब स्वरूप की पहचान होती है तभी उसके लिए दिल में भाव आते हैं। बस अब उस दिन से ईमान इतना पक्का हो गया कि अब बाप बच्चों को कह दिया और कान जी को भी कह दिया, बेटा तू जान तेरी दुकान, अब मेरा कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब घर वाले भी बड़े दज्जाल बन के लड़े, पत्नी भी लड़ी, घर वाले भी लड़े झगड़े, पर महाव जी पर कोई असर किसी प्रकार का हुआ नहीं, ये भी माया का हथियार खाली गया। अब क्या हो गया कि इधर चर्चा का प्रसंग चलते 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 पुलिस के अंदर जो है इस बात की सूचना चली गई कि लोहाना जाति के लोग जो अभी तक छुड़ाए गए नहीं, उनके मालक महराज ठाकुर यहाँ पर आए हुए हैं। तो वाहन का पुलिस का कप्तान जो था, उन्होंने बड़े दरोगे को भेजा, जाओ भाई पता करके आ कि वाकई कथा करने वाले जो है वो तेज कुबरी यहाँ जो हमारे पास बंद में है लोहाना जाति के, वह है क्या, वो ठीक है। अब वो आया, सारी बातें पूछी, पता करके ले गया, जाकर के रिपोर्ट दे दी कि जी हाँ वो जो कथा करते हैं वो वाकई लोहाना जाति के हैं, और फिक्र मत करो मेरी ड्यूटी साहब वहां लगा दीजिए और मैं वहां जाकर के पैसे वसूल करूंगा। अब ड्यूटी तो लगवा ली किससे, पैसे वसूल करने से, लेकिन बहाना किस चीज का, पैसे वसूली का, और आता है चर्चा सुनने क्योंकि ऐसी चर्चा आज दिन तक संसार में थी नहीं, तो सुनता कौन और सुनाता कौन। चर्चा सुनने लगा और सुनते सुनते खूब आनंद में मगन होता है। अब जब वहां से फिर पुरुष की डांट पड़ी ऊपर के अफसर से, भी इतने दिन हो गए क्या खबर तो लाया, क्या लगे, बस हजूर कल पक्की खबर लाऊंगा। तब फिर आकर के वो स्वामी जी से कहता है कि जी आपके आदमी जेल में बंद है और सब जातियों वाले छुड़ा करके ले गए हैं, और कृपा करके आप इतने पैसे जमा कराइए, आपकी पत्नी भी तो जेल के अंदर है, नजर बंद है, और जब तक उनको छुड़ाओगे नहीं आप ये इस तरह से जो है जाहिरी रूप से कैसे आके बैठ सकते हैं। स्वामी जी ने 1-2 बार तो उसकी बात को सुना और टाल दिया और कह दिया अरे भाई को छोड़ तू इन बातों को, तू बैठ अपना काम कर। और तीसरे दिन जरा वो पुलिस वाली भाषा में जब लगा बोलने तो स्वामी जी ने क्या कहा, ओ भाई कान खोल के सुन ले, ना मैं किसी का खाविंद हूँ ना मेरी कोई औरत है, मैं तो वाणी वचन सुनाने वाला एक साधु हूँ, ये मेरे जितने भी नजरबंद बैठे ना जेल में इनसे मेरा कोई शरीर नाता नहीं, ना मेरा कोई मालक है, और इनके पैसे तुझे किसने देने उसका पता मैं बता देता हूँ, लिख ले, वो पाक परवरदिगार जो पूर्ण परमात्मा है ना वो इनका मालिक है, तुमने पैसे मांगने हैं तो उससे जाकर के मांग ले, उसको जिस दिन चिंता होगी अपने आप छुड़ा लेगा, खबरदार कल से मेरे पास ना आना, मेरी बला से इनको 10 साल जेल में रखो, कोई भी दंड दो, मैं अगर तुम्हारे पास सिफारिश लेके आऊं तो तुम मेरी सिफारिश ना मानना, इनका मालिक वो परवरदिगार। ये चीजें बीतक नहीं, इस बीतक को सोचो, इस प्रसंग को सोचो, क्यों ये चीजें स्वामी जी ने इतने संकट अपने ऊपर डाल डाल के हमको रास्ता दिखाया कि ये माया में चीजें आ जाया करती है, लाखों संकट हमारे पर आ सकते हैं, धर्म के बदले में हमारे ऑर्डिनरी जीवन में भी ऐसी चीजें आ सकती हैं, पर साफ दिल के साथ चलते चलिए, अगर मुसीबतें आती हैं तो डरिए नहीं, राज्य सदा सिर पर खड़े तुम्हारे हाजिर नजर। एक यकीन ये मत छोड़ना कि धनी हमसे जुदा है या मेरे राज्य कहीं जुदा है, कोई भी मेरा दुनिया में नहीं है ना बने, एक धनी मेरे सिर पर खड़े हैं जो एक खिन भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। जिस सुंदर साथ का यकीन ये पक्का है, समझ ले उनसे बड़ी बंदगी कोई है ही नहीं। स्वामी जी ने ये जवाब इसलिए दिया, हम चैन करेंगे जब उनको छुड़ा करके ले आएंगे, चाहे कितनी रिश्वत देनी पड़े, कुछ करना पड़े, कहीं से सफारशें मंगानी पड़े, किसी को जाके हाथ जोड़ना पड़े, किसी का टेलीफोन करवाने पड़े, कितनी मुसीबत झेलेंगे। स्वामी जी की पत्नी जेल में है और 4 साल हो गए, किसी भी वहां के मस्कत बंदर के सुंदर साथ से जिक्र तक भी नहीं किया कि भाई मेरी पत्नी जेल में है, सुंदर साथ कोई तो ध्यान करे, किसी का मतलब ही नहीं। दोनों टाइम अपनी चर्चा राज्य की वाणी के बिना कुछ मतलब नहीं है। जब इतना ईमान पर खड़े हैं, अंदर राज्य महाराज बैठे हैं और हर मोमिन के साथ राज्य महाराज है, आखिरी दिन चल के, और वैसे ये चुपाई पड़ी भी जा चुकी है अगर आपको याद हो, दिन एते हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर, अब या जो दिया था महामति के सिर पर, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, और दिल मोमिनों के आए के अर्श कर बैठे कसम। छठे दिन में ये मत सोचो कि भाई किसी एक पर मेहर होती होगी, नहीं, सुंदर साथ जी मेहर के पात्र बनना ये काम राज्य का नहीं। राज्य की वर्षा मेहर की बराबर हो रही है, और जो रोज सुनते हो श्री महामति कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत, हम ही उस मेहर के पात्र न बने। जैसे मानो कोई दूध का खटास वाला बर्तन है, दही वाला या और किसी खटाई वाला रख दिया हमने, सवेरे घंटी वाला आया कहने लगा दूध ले लो जी, हमने उसी बर्तन के अंदर दूध उल्टवा लिया, थोड़ी देर के बाद दूध ने तो फटने फटने। वो साइकिल वाला दूध वाला आया कहने लगा भाई दूध तेरा फटा पड़ा है, कल को नहीं कैसे हमें, हमें 2 किलो के पैसे नहीं काटेंगे। कह रहा है बहन जी सबके दूध ठीक हैं, आपका बर्तन खराब हो सकता है। इसी तरह से राज्य महाराज की मेहर तो बराबर बरस रही है, पर हमारा जो हृदय वाला लोटा है ना, उसमें खटास है, छल है, कपट है, झूठ है, फरेब है, जिनसे हम चाहें तो बच सकते हैं। शुक्र और गरीबी से अगर दिन काटें तो कट सकते हैं, क्योंकि श्री महामति कहे मोमिनों शुक्र गरीबी सबर इन बिद दोस्ती हक की। राज्य से अगर दोस्ती करनी है, राज्य को अपना बनाना है, तो तपस्या तो नहीं लिखी, माला तो नहीं लिखी, सिर्फ उन्होंने कहा है एक ईमान कायम रख करके शुक्र गरीबी। गरीबी का मतलब ये पैसे से गरीबी वाली नहीं, गरीबी का मतलब नम्रता। कितना भी बड़ा राज्य महाराज क्यों ना बना दे, नम्रता से झुक करके सुंदर साथ जान के राज्य के ये राज्य के स्वरूप है, इस भाव से चलिए कर सके त्यों कर। स्वामी जी कहते हैं अगर राज्य को अपना बनाना चाहते हो तो शुक्र गरीबी सबर लेकर के चलो इन विद दोस्ती हक की, कर सके त्यों कर, चाहे राजी हो के कर तो चाहे जैसे भी कर, कर राज्य को अपना बनाना है तो शुक्र गरीबी सबर के बिना कोई रास्ता नहीं। स्वामी जी बैठे ये करके दिखाया हमें, इसीलिए स्वामी जी ने वाणी में लिखा कि मोमनो हादी के कदमों पर कदम धरिए, ये हमारा धर्म। जो स्वामी जी ने हम सब सुंदर साथ को आदेश दिया, हमारी करनी क्या होनी चाहिए, हमारी रहनी क्या हो जाइए, कितना भी संकट आ जाए ना, आ जाने दो, ईमान नहीं छोड़ो, शुक्री से गरीबी से सबर से इसके मुसीबत का सामना करो, उसी को मर्द कहा करते। और वही बात स्वामी जी ने पहले प्रकरणों में भी लिखी है कि तीखा मुंह जल का लहर जो चलती है, जैसे श्रावण का दरिया बह रहा है, तो जिधर को पानी बह रहा है अगर हमने भी उधर ही मुंह करके चलना शुरू कर दिया, हमें क्या पता चलेगा ये माया जो है इसके पानी की लहर कितनी तेज है या क्या तीखा है, उससे उलट होकर चल के देखो जरा, फिर पता चलेगा कि बहते हुए दरिया में एक कदम भी जमाना कितना कठिन होता है, और दरिया के अंदर कई झाड़े, कई हड्डियां, कई जानवर कितने आके छाती में लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं दुनिया जो बही चली जा रही है, अगर ए मोमिनों तुम भी इनके साथ बह करके चले गए तुम्हें क्या पता चलेगा मोहजल कितना तीखा है, इससे जरा उलट करके चल।